ಕೃಷ್ಣ
ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ
ಮಾಲೂಮ್ ಜಾತೆ ಆಮ ಲೋಕ ಕೋಈ ಗಲ್ತಿ ನೀ ಹೈ ತೋ ಇಕಾ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಹೈ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಹಮೇ ಘಡಿ ಕೋ ಉಲ್ಟಾ ಕರ್ ದೇನಾ ಚಾಹಿಯೇ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಹೀಂ ಸೋಚನಾ ಚಾಹಿಯೇ ಸಮಯ ಕೆ ಬಾರೇ ಮೇ ಕಿ ಸಬ್ ಸಮಯ ಬಹುತ್ ಹೀ ದಿಲ್ಲಿ ಹೈ ಆಪ್ ತೋ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಬಾರೇ ಮೇ ದೇಖ ರಹೇ ಹೈ ಸುನ್ ರಹೇ ಹೈ ಕಾಂಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಕರ್ ರಹೇ ಹೈ ಔರ್ ಫಿರ್ ಆಪ್ಕೆ ಲಿಯೇ ಆಪ್ ಸಬ್ ಕೆ श्री कृष्ण का दिव्य प्रसाद भी है आप सभी के लिए सो प्लीज बने रहिए समय का बिल्कुल ख्याल करिए अभी महाराज के दर्शन के बाद फिर से ड्रामा रिज्यूम होगा और द्वारका की लीलाएं सुदामा की लीलाएं और ऐसी कई लीलाएं हैं वो यहाँ पर प्रस्तुत की जाएंगी सो प्लीज बने रहिए रोज लोग रात को 9 से 12 का शो देखते हैं रात को 1:30 बजे घर जाते हैं एंड देयर एब्सोल्युटली ओके तो हम भगवान के बारे में सुनने और देखने के लिए बना 10:30-11 बजे तक घूमना नॉट अ प्रॉब्लम और घर जाके माताओं को चकला वेतन नहीं उठाना है क्योंकि प्रसाद की व्यवस्था यहाँ पर ऑलरेडी है तो इसीलिए यहाँ पर फुली पार्टिसिपेट करिए विद कंप्लीट एब्जॉर्प्शन एंड टेक फुल मर्सी सो लेट्स पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर वंस अगेन फॉर हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज
ओम अज्ञानं तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखानितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा सभी उपस्थित द्वारकावासी जो भगवान कृष्ण के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में ये जो कल्चरल प्रोग्राम उसमें आप लोग आज ये पंडाल में बैठे हैं अब कृष्ण लीला के ड्रामा आप देख ही रहे थे तो मुझे आदेश किया गया कुछ समय आपको कुछ बोलने के लिए यद्यपि मैं सुबह कृष्ण जन्म लीला के प्रसंग के ऊपर चर्चा कर रहे हैं लेकिन अभी मुझे बताया गया कुछ कृष्ण के बाल लीलाओं के ऊपर चर्चा करने के लिए तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को जब भागवत के वर्णन कर रहे थे 10वें स्कंद में तो कृष्ण जन्म के बाद में केवल अभी 6-7 दिन की उम्र में उतना मुख्य लीला वर्णन किए उतना मुख्य के बाद में उसी को वर्णन करने के बाद में तुरंत सकट भंजन लीला सकटासुर का भी लीला किए जब सकटासुर को धार किए तो भगवान की उम्र लगभग 3 महीना हो चुका था 3 मास के थे तो भगवान ने पालने में पढ़ करके अपने पादांगुष्ठ पी रहे थे आप सब सुने हैं भगवान के रूप करार विंदेन पदार विंदम बुखार विंदेन निविशयंतम बटस्य पत्रस्य पुटे शयनम बाल मुकुंदम मनसा स्मरान बड़े बड़े ऋषि महर्षिगण बड़े पवधि में बट पत्र में शयन बाल मुकुंद जो अपने पादांगुष्ठ को मुंह में देकर के चूस रहे थे, इस रूप को ध्यान करते हैं, लेकिन उससे भी कई गुना और सुंदर मनोहारी ये जसोदानंदन जो पालन में पढ़ करके अपने पादांगुष्ठ पान कर रहे थे और उस अंगूठी से पैर छूट करके रोते रोते पैर उछालते उछालते उस सकट में स्पर्श होता है, उस सकट श्रुक उधार होता है। उस लीला के वर्णन करते करते सुखदेव गोस्वामी इतने तन्मय हो गए कि और भगवान के घुटुरबन लीला और बाल क्रीड़ा ऐसे वर्णन ना करके सीधा 1 साल की उम्र के वर्णन किए। अब बीच में 3 महीना से 1 साल 9 महीना का लीला भूल गए। ये अश्रु उद्धार की लीला में क्रम में सुखदेव गोस्वामी बोलने लगे कि परीक्षित जी, एक बार की बात है, माँ जसोदा ने अपने पुत्र कृष्ण को लेकर के अब आंगन में चला गया, अपने घर के आंगन था नंदा आंगन, उसमें जाकर के बैठा और उनके इतने सुंदर मुख था कृष्ण के, अभी लगभग 1 साल के ऊपर हो चुके हैं, मुंह में कुछ दंतावली आ चुका है और सुंदर सुंदर कुंचित केश है। इस सुंदर कुंचित केशावली के अंदर मुख चंद्रमा के सुंदरता जो उसमें चंदन चर्चित किया गया, बहाल में कपूल लगाया गया और पुष्प राशि अलका में सजा गया, इतने सुंदर मुख और उसमें जब भगवान ने हंसते हैं उनके जब वो चंद्रिका छटक रहा है, ऐसे हंस को देख करके जसोदा माँ मुग्ध होकर के उनके बारंबार उनके मुख कुछ मन करता है और उनके बाल को संभाल रहा है और गोद में बैठा करके स्तनपान कराने जा रहा है और अपने को खूब धन्य मन कर रही है। तो आंगन में जितने भी पशु पक्षी सब आ गए थे, सब स्तब्ध देख रहे थे कृष्ण की इस रूप को और माँ के वात्सल्य प्रेम को। तो गैया भी देख रहा थे, बछड़े भी देख रहे थे, तो कृष्ण ने मुंह मोड़ कर देखे, देखे गाय बिल्कुल स्तनमय, गाय बछड़े बछड़े दूध पी रहे थे, दूध पीना छोड़ कर कृष्ण को मोड़ कर देख रहे हैं। तो कृष्ण माँ को बोले, माँ मैं गाय के पास जाऊंगा। तो जसदान बोला, अवश्य तो नंद के पुत्र है, तो गोप है, तेरे पिता को तो 9 लाख गाय है, तुझे तो गोचारण करना होगा, गाय के साथ जाना होगा, लेकिन अभी नहीं, उसका सिंह है तुझे मार देगा, अभी नहीं, थोड़े दिन के बाद तू जाना, समझा दिए। तो मुंह मोड़ के इधर देखे, देखे ऊपर में कई पक्षियां उड़ रहे थे, तो पक्षियां उड़ो लो क्या है, हाथ उठा करके एक बाएं हाथ में अंगुली उठा करके छोटी छोटी नन्हे से हाथ और दूसरे दाएं हाथ में माँ जसोदा के ठोड़ी को पकड़ करके बोलते, मैया वो क्या है ऊपर में, वो क्या उड़ रहे हैं। तो माँ ने देखा, बोले वो तो पक्षी हैं, लोग क्या कर रहे हैं ना, आकाश में उड़ रहे हैं ना, मैं भी उड़ूंगा, मुझे भी उड़ाओ, मुझे भी उड़ना है। अरे अब बोले, बालक तू कैसे उड़ेगा, तेरा पंख ही नहीं है। ना नहीं, मुझे उड़ना है, मेरा हाथ है कि नहीं उड़ूंगा, उनका तो पंख है, मेरा भी तो हाथ है। अब बाल हटा तो हटा ही है, जिद किया, जसोदा ने कितने समझाने चाहा, समझे नहीं, नहीं मुझे तो उड़ना है, तू मुझे उड़ा दो, मेरे 2 हाथ है, मुझे उड़ा दो। तो जसोदा ने माँ बाल के हट, बालक के हट को समझ करके खड़ी हो गई, उठा करके छोटे से बालक के 1 साल के उनको उठा करके ऐसे हाथ से ऊपर फेंकी, छोटे बालक को उछालते ना ऐसे खेलने के लिए, थोड़ी ऊपर फेंकी, जैसे ऊपर फेंकते हैं कृष्ण ने अपने कर चरण ऐसे फैला देते हैं और आंख ऐसे खोल देते हैं, मुंह ऐसे खोल देते हैं ऊपर जब उछाल देती, तो फिर नीचे आते हैं तो जसोदा उनको पकड़ लेती है, जैसे पकड़ लेती है बिल्कुल आकर के उनके गले में चिपक जाते हैं, लिपट जाते हैं, डर जाते हैं, डर के मारे चिपक लेते हैं, थोड़ी देर चिपक के जसोदा उनको थपथपाते हैं, डर गया, नहीं फिर ऊपर जाऊंगा, फिर हाथ उठाते हैं तो फिर ऊपर उछालती है 2 बार 3 बार 5 बार 7 बार, लेकिन उनको तो बार बार उछा और ऊपर ऊपर और ऊपर उठाओ। जसोदा ने थक गई, लेकिन नंदन को मन नहीं भरा था, उनको और उछलना था। अब उनके उछलने की इच्छा को देख करके उनके शक्ति जोग माया ने सोचा कि प्रभु की इच्छा है ऊपर उड़ने के लिए, तो माँ के इतना तो ताकत है, इतना देर तक उठा सकती और उठा ही नहीं सकती, तो क्या करूँ, उनको तो ऊपर राइड जाना है। तो जानबूझ करके जो माया ने इसे व्यवस्था की कि कृष्णा एक साल के बालक थे छोटे से, इतने भारी हो गए, इतने भारी हुए कि जस्ता माँ गोद में लिया लेकिन रख नहीं पाया, इतने भारी हुआ कि बैठ गई, बैठ कर भी उसको धारण नहीं कर पाई। बोला क्या हो गया मेरा, आज मेरा कोई तबीयत खराब हो गया, पैर दुख गया, मैं तो अभी भी बैठी थी, कोई दिक्कत थका तो नहीं हूँ, ये क्या हो गया, मेरे स्वयं बालक को मैं नहीं उठा पा रही हूँ, मैं किसी को बोलूँ तो कौन क्या बताए, ये तो बड़े शर्म की बात है, मेरे छोटी सी लाला है नन्ना सा एक साल के बालक है उसको मैं गोद में धारण नहीं कर पाता हूँ, इतने भारी हो गया, सचमुच इतने भारी हो गया तो उनको धारण कर ही नहीं पाई, अंततः नीचे रखना पड़ा, बड़े व्यथित होकर के नीचे रख दी, रख करके बड़े चिंतित हो गए, क्या उनको कुछ हो गया ना मुझे कुछ हो गया, ऐसे विचार करके याद आया घर में तो दूध अभी बैठाई थी, अभी उफान आ रहा होगा, तुरंत दौड़ करके उतार के आ जाऊं, इसलिए जल्दी से चला गया, इतने भारी बालक तक कोई इधर उधर जा नहीं सकता, उनको बैठा करके माँ ने घर में चली गई उसको उतार करके आने के लिए दूध की मटका। इतने में ही दुर्वासा मुनि कहते हैं कि एक बार एक पांडे नरेश था सहस्राक्ष राजा, उन्होंने अलकापुरी में जा कर के अपने कुछ स्त्रियों के साथ जा कर के क्रीड़ा कर रहा था और उनको पता नहीं कि उस पास में उस नर्मदा नदी के तट में दुर्वासा जी बैठे थे तप करने के लिए, ओ नर्मदा में जाकर खूब जड़ क्रीड़ा कर रहा था, पानी उछल रहा था और उनको ध्यान भी नहीं देखा, देखा भी नहीं, प्रणाम भी नहीं किया, तो दुर्वासा जी इसमें अप्रसन्न होकर आकर के उसको बोले गाली दे, बोले मूर्ख तो ऐसा ही जल में धड़ मचा रखा है, पानी फेंक रहा है, इधर उधर कर रहा है, गाली दे करके उनको अभिशाप दे दिए, बोले तेरा बहुत गर्व है, तो इस शरीर के ऊपर में तेरा गर्व है, पानी में ऐसे उछल कूद कर रहा है तो शरीर हीन हो जा, जा तो इसी पानी में वायु की तरह पानी फेंक रहा है तो वायु शरीर हो जा। तो उन्होंने आकर चरण पकड़ा और गलती हो गया माफ कर दो, तो दुर्वासा ने बोले चलो ठीक है सांप तो दे दिया, तो सांप के उद्धार के उपाय आ भगवत मन्वंतर में 28 चतुर्दिक में द्वापर अंत में परम पुरुष भगवान आएंगे, उनके स्पर्श से तेरा मुक्त होगा, अब लाखों साल जाओ धरती में असुर बन रहो वायु शरीर। तो वही पांडे नरेश सहस्राक्ष दुर्वासा के सांप से ये बात्या चक्र चक्रवात बन करके आया था, उसका नाम पड़ गया था तृणावर्त, तृणावर्त। हम देखते हैं कभी कभी चक्रवात, कभी साइक्लोनिक वेदर होता है, समुद्र किनारे ये सब जगह पर होता है साइक्लोन, आपके यहाँ से कम होता है, समुद्र उपकूल क्षेत्र में होता है, लेकिन ये जितने साइक्लोन था उनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था, चक्रवात के अधिपति था, वो बनकर के आया और असुर बनकर आया तो कंस के साथ उनका फ्रेंडशिप हो गया, तो कंस उनको मित्र करके बुला करके मथुरा में फाट दिया था, वहीं रहते थे मथुरा में, यद्यपि उनका ऐसे घूमने फिरने का तो मरुभूमि में जाता था इधर उधर, लेकिन मथुरा में उनका रेजिडेंस था। तब जब पूतना दीदी के उद्धार हो गया तब कंस तभी से बड़ा टेंशन में पड़ गया था, वो कैसे टेंशन, जो 7 दिन का बालक इतने पराक्रमशाली पूतना को अधर लगा करके प्राण ले लिया उनका, तो कंस कैसे चुप बैठ सकता है, तो इसलिए खूब टेंशन में था कैसे उनको किया जाए, दिन गणना कर रहा था, माँ से भी ज़्यादा आलट था उन्होंने। तो दूसरा असुर भेजा था उत्कच को, सकटासुर के रूप में आया था, लेकिन उनका भी वही हाल हुआ, तो कंस बड़े चिंता में था, बोला देखो पूतना दृश्य रूप में गया था, देवी बनकर के गई थी, उनका उद्धार हो गया, उत्कच ने सकट बन करके अदृश्य रूप में गया था, उनका भी उद्धार हो गया, ये बड़े गड़बड़ है, चाहे दृश्य अदृश्य दोनों ही गड़बड़ होता है, उनके बीच में दृश्य अदृश्य उसके बीच का कौन है, ये वायु शरीरी उत्कच है, वो सहस्राक्ष है तृणावर्त, वो वायु है, दिखता भी है नहीं दिखता है, स्पर्श भी होता है, तो उसको भेजते हैं वो शायद काम करेगा, तो उनको बुला कर परामर्श किया, तो तृणावर्त ने उनको सांत्वना दिया चिंता मत करो, ऐसे जब उतना महापराक्रमशाली उनको जब मार डाला, एक लगता है कि कोई खतरनाक तो है, इतना आसान तो नहीं है, लेकिन आप चिंता मत करो, मेरे अंदर ये क्षमता है, मैं उनको पल पंगा नहीं लूंगा, मारूंगा नहीं उसको, तो इसलिए मुझे नहीं मारेगा, और मैं ना रूप बनाकर जाऊंगा ना अदृश्य जाऊंगा, मैं बीचों बीच में जाऊंगा और उनको लाकर आपके जिम्मा धर दूंगा, आप चाहो जो करना है करो, वो उठा के ले आप बस। कंस बोला बहुत अच्छा है, तू यहीं तक कर लो इतना काम। तो इतना बर्तन है, कंस के आदेश से जा करके उनको महावन में पहुंचा। अब माँ ने अपने पुत्र कृष्ण को बैठा करके इतने भारी रूम में गई थी, जस्ट एक क्षण के लिए गई थी, और इतने में ही वो नजर रखा था, देख रहा था ऊपर आकाश कि माँ ने बैठा है। बोला अभी दोनों को नहीं, जब अकेला अकेला रहेगा तब उड़ा लूं। तो इतने जोर से प्रणावर्त आया, जैसे चांस मिला उनको प्रणावर्त, जैसे माँ घर में गई तुरंत आया, और आया घुमड़ते घुमड़ते हुए विशाल अंधड़ बन करके, धूल के अंभार पत्थर और कंकण सारे सृष्टि में इतने सारे कोसों दूर तक लेकर के विशाल आकाश पर्यंत चक्रवात वात्या चक्र जैसे बन करके आया। आते समय महावन के रास्ता पर कितने कितने बड़े बड़े पेड़ को जड़ उखाड़ करके फेंक डाला, टड़मड़ होकर के सब पेड़ तोड़ रहा था, इतने सारे महा विनाश करते हुए उस वात्या चक्र बढ़ते बढ़ते आया। देखते ही देखते दिशाओं अंधार में भर गया, अंधकार हो गया और चारों तरफ धूल भर गया। पक्षी क्रंदन करके भागने लगे रब करके, क्योंकि पक्षी अगर अंधड़ में पड़ जाएं उस चक्रवात में, उनका तो पंख पंख चिथड़ उड़ जाएगा उनका। पक्षी क्या पशु भी, वन के पशु भी डर के मारे भागने लगे। गोष्ट में बंधे हुए जो गाय बछड़े वो आपने रस्सी तोड़ करके हम्मा रेडी करके भागने लगे, और गोप और अन्य मनुष्य कर भी क्या सकते थे, इतने धूल आ रहा था, आंख खुला ही नहीं जा रहा था, इतने धूल और इतने तेज से हवा चल रहा था, सब आंख बंद करके जहां तहां अपने वस्त्र संभाले दुबक गए बैठ गए, जहां तहां कुछ कर नहीं सकते, आंख खुला नहीं जा सकता, चला नहीं जा सकता। और इतने क्षण में आया चारों तरफ अंधकार धूल से भर करके, जब शब्द करके सारे पेड़ फेड़ उखाड़ करके आ रहा था, गोकुल में जब पहुंचा तब वो थोड़ा कंट्रोल किया, बोला कि मुझे केंद्रित करना है नंद आंगन में, वहीं लाला बैठा हुआ है, उनको उठाना है, तो अपने पूरे ताकत वहीं सेंटर करने के लिए आ रहा था। वही शब्द सुन करके माँ जसोदा गृह से बाहर निकला, मैं लाला को बाहर अकेला बैठा था, इतने साउंड इतना तूफान आ रहा है, बाहर आने के लिए विचार कर रही, वो दरवाजा खोल करके बाहर आई और देखा ही नहीं पड़ी, इतने धूल आ गया, आंख बंद हो गया, आंख बंद हो गया, सब उड़ते जा रहा है, इतने तो दिखाई नहीं पड़ा, इतने तेजी से हवा चला, उनके शरीर से वस्त्र उड़ जा रहा है, केस उड़ जा रहा है, फूल उड़ जा रहा है। इस अवस्था से वो आई अंधड़ में, आकर आंख बंद था, आकर के टटोला, ऐसे टटोले जहाँ रखा था अपने लाला को बैठाया था, वहाँ जाकर हाथ लगा कर देखा, देखा कि जहाँ नीलमणि को बैठा था वो है ही नहीं, और ही उनका तो हार्ट बीट बढ़ गया, छाती धड़ धड़ होने लगा, मैं तो लाला को यहीं बैठा था, अभी अभी गया था, कहाँ चला गया वो, ओ हाथ बढ़ता हो, आँख तो खुला नहीं जाता, ऐसे आँख बंद किए किए ढूंढता नहीं मिला, बिल्कुल इतने दुखी हो गई, मन में एक ही आशा रहा कि बड़े चंचल है, नटखट है, एक साल का तो हो गया है, यहाँ में बैठा कर चला गया था, पता नहीं कोई इधर उधर चला गया होगा, ये तूफान आ रहा है उसको देख कर डर भी गया होगा, पता नहीं कोई कमरे में चला गया, कोई कोने में जाकर छिप गया होगा, डर के मारे रो कर मुझे बुलाता भी होगा, लेकिन इतने जोर से तेज हवा चल रहा है, शब्द चल रहा है, सुनाई भी नहीं पड़ रहा है, ये मन में आशा करके आशंका करके माँ ने और क्या कर सकती है आवाज की, आंख बंद करते करते नीलमणि नीलमणि ऐसे खूब जोर से तेजी आवाज की, और मिल नहीं रहा है, बोल रहा है कि वह नीलमणि कहाँ चला गया, आंख बंद करके आवाज करती है, रोती है, तो आवाज सुन करके रोहिणी देवी आंगन से बाहर आई, वो बाहर जिस सुना नीलमणि नहीं है, वो भी दौड़कर आती थी, सुन करके बाहर आते आते वो भी मिर्चित होकर गिर पड़ी, माँ दशोदा बाहर आंगन में मूर्छित हो गई, वो भी मूर्छित हो गई, और जितने इस खबर को सुन करके नंद भवन आदि में आसपास में जितने गोपी थे गोप थे सब दौड़ पड़े, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, कोई आंख नहीं खोल सकते हैं। ऐसे भयंकर अंधकार धूल झड़ में व्यथित होकर के केवल कृष्ण को अर्थ चित्कार कर व्याकुल होकर पुकारते हैं, बड़े हृदय विदार में सिर रो रो करके चित्कार करते हैं, कहाँ गया कहाँ गया, इधर उधर छटपट होकर के ढूंढ रहे हैं, लेकिन कहाँ से कुछ सुनाई भी नहीं पड़ रहा है, कृष्ण मिल भी नहीं रहे हैं, तो उनकी आतुरता व्याकुलता और बढ़ते चला जा रहा है। और उधर क्या हुआ है, तृणावर्त ने चक्रवात के रूप में जब देखा है मौका कि वही बैठा है अकेला, तो पूरे शक्ति से आया तेजी से उस आंगन से आकर के लाला को उड़ा ले गया, अपने फुर से उनको उठा के ले गया। और कृष्ण तो चाहते थे ऊपर उछलने, अभी अभी माँ के बहुत से प्रैक्टिस किए हैं तो ऊपर उठना, अभी एक आध मीटर उठे थे, उनको और थोड़ा ऊपर उठने का इच्छा था, तब वो हवा उठाने लगे, खुश हो गए, उठने लगे, सीधा उठ रहे थे, बहुत ऊपर उठा लिया उन्होंने। उठा करके उन्होंने सोचा कि अभी उसको मैंने पूतना की तरह नहीं करूँगा कि उनको मारने के लिए कोशिश करूँगा, मैं उठा के लाया सीधा मथुरा ले जाऊँ, मथुरा कोई ज़्यादा दूर थोड़ी है, हैं 10-12 किलोमीटर है, सीधा लेकर वहीं लैंडिंग कर लूँगा और क्या, ज़्यादा दूर तो है नहीं। तो इसी चक्कर में उन्होंने ऊपर उठा करके बाई फ्लाइट उनके ले जाना चाहता था आकाश मार्ग में, और लेना चाहता था, लेकिन ये अखिल ब्रह्मांड नायक भले छोटे स्वरूप में आपने आप प्रकट करके रखे नंद नंदन के रूप में, लेकिन है तो सारे विश्व की एकमात्र मालिक, और उनके इच्छा था ऊपर थोड़ा उठने के लिए, कहीं जाने के लिए तो इच्छा था नहीं उनका, वो उनको लेना चाह रहे हैं, वो जाना नहीं चाह रहे, जो नहीं जाना चाह रहे उसे कैसे ले पाएगा, कोई शक्ति नहीं उनको ले जाए, उनको इच्छा था ऊपर जाने के लिए तो ऊपर ले पाया, उनको हल्का हो गया, अब जब वो लेना चाहा वो जाना नहीं चाहे। अभी तो अभ्यास किए थे, माँ जब उनको ऊपर उछल रहा था ऊपर जाते थे तुरंत नीचे आकर के माँ के गले को चिपक जाते थे, तो ये प्रैक्टिस किए थे, जब इतने ऊपर उठ गए खूब उनको लगा बहुत ऊपर आ गए खुश हो गए, तो चिपकने के लिए प्रैक्टिस हम किए थे, तो तृणावर्त के गले में दोनों भुजा फैला करके लिपट गए, लिपट गए तृणावर्त के गले में, अब तो उनको प्रैक्टिस था, अभी अभी किए थे, लिपट गए तृणावर्त को बोला मेरे गला क्यों पकड़ लिया, गला क्यों पकड़ लिया, अरे ऊपर उठाया तो गला पकड़ गया, जितने ऊपर उठे गए इतने ज्यादा टाइट में पकड़ गए, छोटे बच्चा है डर लगेगा तो ज्यादा जोर से पकड़ लिपट जाएगा, वो ज्यादा जोर से और ज्यादा जोर में पकड़ रहा है, इधर उधर जाना कोशिश किया और ज्यादा तृणावर्त, ओ जब वो मथुरा की तरफ मुंह मोड़ा तब उस कृष्णचंद्र ने आपने वजन बढ़ा दिए, अभी अभी बढ़ाए थे वजन, इतने भारी हो गए, ये महाअसुर तृणावर्त को लगा पता नहीं मैं ये लड़का को उठा कर लाया ना कोई पर्वत उठा लाया, इतने भारी कैसे हो गए, इतने हैवी वेट, ऐसे हैवी वेट कैसे, कई टन वजन बढ़ गया उनका, ओ उनको और हिला डुला नहीं गया, इतने भारी बढ़ते चला गया, और वो ज़्यादा से ज़्यादा उसके गला को लिपट रहे हैं, इतने गला को जोर से प्रेस कर रहे हैं कि उसको संभला नहीं गया, ऊपर से ही क्योंकि जो आपने भगवान के भक्तों को जसोदा माता रोहिणी और सारे गोप गोपियों को जंत्रणा से छटपट हो रहे हैं चित्कार करके नीलमणि कर्णो कृष्णचंद्र कहाँ है, जो भगवान के भक्तों को इस कष्ट दे रहा छटपट करा रहा है तो उनका क्या गति होगा, तो भगवान ने उसको गले में ऐसे जोर से कसा हाथ डाल करके तो बिल्कुल संभला नहीं गया, उसमें वही ऊपर से आकाश से गौ गौ करके आवाज किया, उनके नाक से मुख से ब्लड निकलाया, जीवा बाहर निकलाया बेचारा ऊपर से, और आवाज नीचे सुनाई नहीं पड़ रहा था, और वहीं से प्राणहीन हो करके नीचे गिर रहा था, और नीचे से जसोदा मूर्छित होकर पड़ी थी, रोहिणी मूर्छित होकर पड़ी थी, बाकी सारे गोप गोपी बड़े आर्त चित्कार करके पुकार रहे थे, और जैसे ऊपर जा करके उनको प्राण उसका गला घोट दिए थे भगवान ने, तो धीरे 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 जो धूल कंकण उड़ रहा था वो सब नीचे बैठ गया जहाँ तहाँ, दिशाओं धूमिला हो गया, धीरे 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 सब वो अंधकार दूरीभूत हुआ, दिखाई पड़ा, आंख खोले तो कहाँ है किधर है, अरे ये तो साइक्लोन बात्या चक्र चक्रवात आया था, लड़का को उड़ा ले गया, उड़ा ले गया करके कितने जो सुना वो भी मूर्छित होकर गिर के पड़ा, इतने विकल होकर के। अब विकल होकर पड़े, अब द्रोणावर्त ऊपर से निष्प्राण होकर के नीचे गिर रहा है। भगवान ने बोले इधर उधर नहीं लूंगा, मेरे घर के लोग माँ वगैरह सब बड़े विकल होकर ढूंढ रहे हैं, तो लैंडिंग वहीं पर करना चाहिए आंगन में। तो नंदा के आंगन में बहुत बड़े चट्टान था, पत्थर का चट्टान था। भगवान बोले वहीं लैंडिंग करा देते हैं और क्या है, तो वहीं पर लैंडिंग कराने के लिए उनको कौन सा और इधर उधर फील्ड चाहिए, रनवे चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सीधा ऊपर से तो डेड बॉडी हो चुका था, सीधा वही गिरा। गिर करके इतने तेजी से पत्थर के ऊपर गिरा, पूरे विशाल शरीर असुर का चिथड़ हो गया, फट फाट करके रक्त की धारा बहने लगा। बड़ी इतने बड़े साउंड सब दौड़े, क्या हुआ दौड़े, गोगो दौड़े, देखे उसके गले के ऊपर में अभी भी कृष्ण चंद्र, इससे काले कज्जल शरीर विशाल के ऊपर में, गले के ऊपर भगवान ने पैर उछाल रहे हैं, हाथ उछाल रहे हैं और आनंद में चित्कार कर रहे हैं, किलकारियां कर रहे हैं, क्योंकि इतने ऊपर राइड किए उन्होंने, जैसे बच्चे को ऊपर उछालने से वो किलकारियां देता है, आनंद वही से आनंदित हो रहे हैं। और सभी दिखाई पड़ रहा है ऊपर से, जैसे कोई एक विशाल काला पर्वत हो और सूर्य उदय हो रहा हो, उसके ऊपर एक नीलमणि पड़ा हो, ऐसे चमक रहा है। ऐसे भगवान ऐसे ही इस तृणावर्त के विशाल असुर के शरीर के गले के ऊपर बिल्कुल नीलमणि सदृश चमकते हुए, तेज पुंज से चमकते हुए अपने हाथ पर उछालते हुए किलकारियां लेते हैं। अब उपनंद पत्नी अतुला ने सबसे पहले दौड़ा, अरे नीलमणि इधर ही है, राक्षस के गले में दौड़ कर जाकर उठा कर लाई और ला करके चलाई, नीलमणि सकुशल है कुशल है, ला करके रोहिणी उठी, जसोदा के पास ली, सबके मूर्छा टूटी, सब देखे कि नीलमणि सकुशल है, पूरे हाथ पांव मुंह सब हाथ लगाकर चेक किए, कोई गड़बड़ी तो नहीं, गड़बड़ी कैड हुआ, वो तो राइड लेकर गए थे, उनका क्या गड़बड़ी होगा, वो बहुत ढंग से लैंडिंग किए, जैसे ऊपर उठे थे ऐसे लैंडिंग किए, कोई गड़बड़ी नहीं, फुल कंट्रोल था उनका कोई गड़बड़ी नहीं हुआ वो जो जिस प्रकार से आया था तृणावर्त तो उनका उद्धार हो चुका था। तो इसे विशाल शरीर को कौन देखे, रक्त की धारा बह रहा है, नंदनंदन को लेकर के सारे गोपियाँ, अब जसोदा माँ मूर्छित होकर उठी, बोले कि नीलमणि सुख है, कैसे था नारी, असुर का गले में पड़ा हुआ था, ओहो मुझे तो बिल्कुल भान नहीं था, कैसे बात्या चक्र उठा लिया था, मैं क्या करूं, मुझे क्या बताऊं, मेरे पुत्र होकर के मुझे इतने भारी लगा कि मैं उनको गोद में धर नहीं पाया, इसे बैठा दिया, इतने भारी को कैसे हवा में उड़ा लिया, ये तो आप लोग के बड़े ग्रह नक्षत्र बहुत तेज है, आपके सौभाग्य के कारण मेरे पुत्र आज सकुशल बच में आया। तब बोले नहीं नहीं तो आपके ही अंक धन है, आपके ही पुत्र है, तो जसोदा की गोद में दिए, जसोदा तुरंत ले लिया, लेकर के देखने लगे, सब वृद्ध वृद्ध गोपी ने आ गए, बोले जसोदा ये असुर ले गए था उनको, पता नहीं वो तो बहुत कंटामिनेट हो गया होगा, दूषित हो गया होगा, पता नहीं कोई असुर भूत प्रेत आ गया होगा, न क्या करें, ना देखो अगर बच्चा ठीक से स्तनपान करता है तो मतलब ठीक ठाक है, यही प्रमाण है। तो तुरंत जसोदा माँ ने अब अपने साड़ी के ओट में अब स्तनाग्र मुख में दिया, भगवान ने ऊपर अभी खूब राइड करके आए थे, भूख लग गया था, तुरंत पीने लगे, हंस हंस कर पीने लगे, तब प्रमाणित हो गया ना ठीक ठाक है, कोई कंटामिनेशन अभी आया नहीं, नहीं आया तो क्या हुआ, उसके गले में बैठा था, हम देख रहे इतने बड़े असुर, सारे बोले नहीं अब तो कुछ करना होगा, अब चलो अब सांडिल्य ऋषि को बुलाना पड़ेगा, भागुरी मुनि को बुलाना पड़ेगा, पूजा करना पड़ेगा, प्रायश्चित करना पड़ेगा, शुद्धिकरण करना पड़ेगा, सब तैयारी करना पड़ेगा, वो गए बुलाने के लिए उनको, चलो उठो, अरे पूरे जो धूल झड़ आया था, घर द्वार आंगन साव धूल पत्थर कंकण भरा हुआ है, और जसोदा रोहिणी गोपियों का हाल भी खराब, किसी के वस्त्र ठिकाना नहीं है, सब उड़ उड़ कर इधर, केस भी उड़ चुका है, इधर उधर फैल चुका है, वस्त्र भी इधर उधर हो चुका है, अब ये दूसरे को बोल रहे हैं कि अरे जसोदा अभी सब आएंगे ऋषि मुनि पूजा होगा, तो ये भूतनी की तरह क्यों दिखता है, उठो जाओ अपने को ठीक ठाक करके नहा धोकर करो, आंगन भी साफ करना होगा, धूल सब साफ करना होगा, साफ कुछ करेंगे तभी तो ऋषि मुनि आएंगे, पूजा होगा, लाला को पूजा करना पड़ेगा, उनके प्रायश्चित कर्म क्रिया करना पड़ेगा, तब तुरंत जा करके सब अपने अपने सुधारने लगे, केश सुधारने लगे, सवारने लगे, वस्त्र संभालने लगे और अपने को सुधार करके आंगन घर द्वार सब साफ सुथरा करने गया। और नंद महाराज आदि ब्राह्मण और मणिमंडल को बुलाए, बुला करके क्योंकि असुर उड़ा ले गया था उसको, ला करके अभी उनको मंत्र पाठ के द्वारा पवित्रकरण किया जाएगा। पवित्र करने के लिए उनका जो पद्धति है गोप में, उनका आजकल तो हम कई लगाते हैं, हस्पताल ले जाते हैं, केमिकल चढ़ाते हैं, ऐसा नहीं, वो सीधा सबसे पहली पद्धति है पिता के हाथ में गोबर लगाएंगे उसमें, फिर गोमूत्र डालेंगे, फिर गोरज गाय के पैर खुरा के धूली लाकर उसमें डालेंगे, फिर गाय के पूछ में उसको झाड़ेंगे, वही उनकी पद्धति है। ऐसे करेंगे फिर मंत्र पाठ होगा, स्वस्ति वाचन होगा, फिर कुछ करेंगे, लेकिन सबसे पहले गोमाता के द्वारा उनको रक्षा कर किया जाएगा। इस प्रकार के गोमाता के गोबर गोमूत्र गोधूली और गोपुच्छ के द्वारा उनके रक्षा कवच में इसको रक्षित किया जाएगा। इस प्रकार गोपाल को गायों की सारे इस प्रकार गोपुच्छ गोबर आदि के द्वारा विशेष रक्षा कर्म किया गया, सारे गोप गोपी ने किए। उसके बाद मंत्र स्वस्ति वाचन के साथ उनको पवित्रकरण किया गया। इस प्रकार से आचार्य लोग कहते हैं ये जो तृणावर्त आया था, पहले तो भगवान ने पुतना को उद्धार किए, पुतना तो अविद्या के रूप था, अविद्या को निकाल दिए। उसके बाद आया सकट, सकट देहाध्यास था तो उसको भी जो देहाभिमान निकाल दिए, लेकिन ये तृण आवर्ता ये सब निकल जाने के बाद में ये गुण बहुत सटल होता है। रजगुण और तमगुण जो आ जाता है ना, भगवान की सेवा भगवान साथ में रहते हुए भी नहीं करता, अरे मन भारी हो जाता है, शरीर भारी, रजगुण तमगुण भोग प्रकृति लाता है। रज मतलब धूल, धूल को रज कहते ना, ब्रज रज, रज मतलब धूल, तो रजोगुण मतलब धूल, वो अंधड़ तो धूल लेकर आया था ना सारे, वो रजोगुण है और तम है अंधकार, अंधकार डार्क अज्ञान तम। तो ये जो धूल और अंधकार ये दोनों को लेकर के वो तो नावर्त आया था, ये रज और तम। तो रज तम गुण जब आ जाता है तो व्यक्ति भक्त होने के बावजूद भी ऐसे भोग के विचार मन में आ जाता है और ऐसे आलस्य की और सोने का तमगुण में निद्रा आता है और रजगुण में भोग की विकार मन में आता है, और ऐसे आलस्य और भोग की प्रबलता आ जाता है रजतम के द्वारा, अब भगवत सेवा हो नहीं सकता। तो इसलिए इस दोनों को उद्धार करना जरूरी है, इसलिए भगवान ने तृणावर्त के रूप में ये रजो और तम को उद्धार किए। जो धूल और अंधकार को लेकर आया था उसको इसी प्रकार ऊपर उठा करके ऊपर से मार करके ब्रजजन पालना, ब्रजजन को रजगुण से तमगुण से उद्धार किए भगवान ने अपने बाल लीला में। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने अपने अति सलोने बाल लीला के द्वारा ब्रजजन को विशेष उद्धार करते हैं और इतने सुंदर सुंदर लीला से सारे ब्रजजन को आकर्षित करते हैं, जिसको सुन करके हम अपना कल्याण कर सकते हैं। भगवान ने जन्म होकर के ऐसे ही लीला करते हैं, किसलिए लीला करते हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने जन्म लीला के बाद ऐसी लीला करते हैं जिस लीला को हमको सुनने के लिए हमको मैटर मिलता है, नहीं तो हम बोलते क्या, सुनते क्या। अगर इस प्रकार भगवान कृष्ण के असुर निधन और लीलाएँ, जन्म आदि लीलाएँ को हम सुनेंगे और बोलेंगे तो हमारा इस ये जड़ शरीर, हमारे जड़ बुद्धि वही सुधरेगा, वही कल्याण उसका होगा, यही प्रकार होगा। इसलिए भगवान ने इस प्रकार जन्म होकर के अद्भुत अद्भुत लीलाएँ कर रहे हैं। तो इस लीलाओं से एक प्रकार की लीला ऐसे है, इसे तृणावर्त उद्धार है। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, अब आप लोग मुझे देखने से आतुर हो रहे हैं। प्रभु जी ने बोले 10 बजे से पहले प्रसाद भी चालू करा देंगे, प्रभु जी ने बोले फिर ड्रामा अभी उठ रहे फिर चालू होगा, तो इसलिए तो इस प्रकार भगवान के बाल लीलाओं में से मैं एक लीलाओं के आपके वर्णन करके सुनाया, लेकिन भगवान के लीलाएं अनेक है, ऐसे एक नहीं है, एक के बाद एक लीलाएँ हैं। इस प्रकार एक साल के बाद जब तृणावर्त को उद्धार किए तो इसके बाद में सुखदेव जी ने भगवान को घुटर बन लीला शैशव की क्रीड़ा वर्णन करते करते बोले एक साल के बाद में भगवान तो मैया को बोलते थे, बोले मधु एक साल से ऊपर हो गया, अब तो मुझे गाय के पास जाना चाहिए, तो गाय के पास नहीं तो बछड़ा के पास जाऊंगा। तो भगवान ने जिद किए तो उनको बच्छपाल बनाया गया, बछड़ा चराने का दायित्व। पहले कोई बछड़ा नहीं चराते थे, कृष्ण ने रिकॉर्ड सृष्टि किए इतिहास में सबसे पहले, बोले हम गाय नहीं चराते हैं बछड़ा चराएंगे। अरे बछड़ा कोई चराते थोड़ी, बछड़ा घर में रखते हैं, गाय को दूर में लेकर जाते हैं, बोले हम लेकर जाएंगे। अब बछड़ा चराएंगे क्या, चरते तो खुद वही थे, बछड़े नहीं चरते थे, बछड़े क्या चरेंगे, वही चरते थे, वही जाते थे अपने बालकों के साथ जंगल में खूब खेलते थे घूमते थे, बोलते हम बछड़ा चराते, बछड़ा क्या चराएंगे, वही चरते थे बच्छपाल। बच्छपाल मतलब वही तो बच्चे थे सब, वही बछड़े बन करके जाते थे, वो जंगल में जा करके वो मेढक को देख करके ऐसे कूदेंगे, हिरन जैसे चलता ऐसे चलेंगे, चिड़िया को देख करके उनके स्वर को इमिटेट करेंगे, ऐसे उनके काम था। बाल क्रीड़ा करते करते एक बार की घटना है, अभी लगभग भगवान ने 2 साल की उम्र हो चुका उनका, और बछड़े लेकर के चलाते हैं वो 2-3 साल में इतने उत्पात असुर गोकुल में बनाए, तो नंदबाबा गए आगरा गोकुल से वृंदावन आ गए थे। जब वृंदावन आते हैं तो वृंदावन के लीलायक है, वहाँ पे पुतना के उद्धार हो जाने के बाद में पुतना के एक भाई था, छोटे भाई था, जिनका नाम था बकासुर, और बकासुर का छोटा भाई था उसका नाम था अघासुर। अघ मतलब पाप, पाप के बड़ा भाई होता है बक, तो पाप के बड़ा भाई है, उसके बहन है पुतना, ये सारे पाप परिवार है, तो हाँ उनके भाई बहन है तो पाप के। तो बक ने जब पुतना दीदी के मरने के बाद में वो प्रतिशोध लेने के लिए आग बबूला होकर घूमना, अब कंस ने दिग्विजय के तौर पर जब गया था आसाम के साइड में तो ही उनको सबसे पहले बक में चैलेंज किया था, बक के साथ द्वंद्व युद्ध हुआ था कंस का, बक पराजित हो गया था, तब उनका अनुचर बन गया था, तो उनको फ्रेंडशिप कर लिया उनके साथ में, तो उनके पीछे पीछे अघ आया था, अघ को भी उन्होंने परास्त किया था, तो उन दोनों के दीदी पुतना आया, तो पुतना को कंस देखा कि इतनी बलशाली थी, कंस भी डर गई, सोच में पड़ी कि पता नहीं बहुत मोटी तगड़ी दिखती है उसके ये दोनों भाई तो झेल लिया, लेकिन भाई उसको लगता है, तो कंस ने सोचने लगा, बोला अगर मैं उनका साथ पंगा लूं, अगर मैं हार जाऊं तो बहुत अपजस होगा मेरा, अगर जीत भी जाऊं कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, कि स्त्री से लड़कर जीत जाने से कोई क्रेडिट बोलेंगे नहीं, और हार जाऊं तो नाक तो कटेगा ही, तो इसलिए अच्छा यही होगा उनके साथ पंगा ना लिया जाए। तो उनको जाकर प्रस्ताव दे, बोला देखो तुम्हारा भाई मेरे साथ मेरा भाई बन गया, तू मेरा बहन है, बहन के साथ लड़ाई क्या, तो उनको बहन बना दिया, राखी बंधवा दिया राखी बंधवा करके बहन बना करके ले आया, बोला चलो फिर हम मैच निकलेंगे, सिस्टर बना करके उनको मथुरा ले आया, वहाँ ला के रखा, फिर यहाँ कमलेशन दिया वहीं रखा दिया। तो वो पुतना के मरने के बाद में कंस ने खूब उनको ललकारा, देखा तुम्हारे बहन को कैसे मार डाला, ऐसे है। बक ने, बक का इतिहास कहता है कि जाजाली मुनि के उनके तो सांप से उन्हें बक बना था, उन्होंने जो राक्षस राज हयग्रीव का पुत्र था, हयग्रीव का पुत्र उत्कल नाम था उसका, उन्होंने गंगा सागर में जाकर के बंसी पर डालकर मछली पकड़ रहा था, और यह कपिल आश्रम था, वहाँ जाजाली मुनि वहाँ तपस्या कर रहे थे, उनको मना किया, बोले भाई देखो ये तीर्थ है यहाँ ऐसे मत करो, लेकिन उनका बड़ा घमंड था, बोला मैं इंद्र को भरा कर तू हुआ रही एक ब्राह्मण, तू मुझे क्या धमकाएगा, माना नहीं उसको, माना नहीं, जबरदस्ती यहाँ मछली पकड़ने लगा, तो गुस्से में आकर जाजाली मुनि उनको बोले तेरे इतने ही हिम्मत है तू मछली खाना चाहता है, इतने ध्यान करके तू बगुला बन जा, तो उनके हिसाब से मत्स्याहारी बक बन गया। बक बना तो ऑर्डिनरी बक नहीं बना, एक पर्वत के समान, जैसे कोई हिम के पर बर्फीला पहाड़ हो, ऐसे बर्फीला चोटी की तरह ऐसे बगुला बना, इतने विशाल। और उनको कंस ने मथुरा ला कर रखा था, तो उन्होंने कंस की प्ररोचना में अपने बहन का मृत्यु का मर्डर का बदला लेने के लिए, प्रतिशोध लेने के लिए वो सुजुग ढूंढ रहा था, अपरेत होकर आया था वो, लेकिन गोकुल नहीं गया। और जब वृंदावन आए, लक्ष्मणाचरण वृंदावन में आ गया, और आ करके ऋषि मुनि सब देख रहे हैं भगवान की बाल लीलाओं को, उन्होंने आ करके चांस ढूंढ रहा था। तो कृष्ण ने बछड़ा चराते चराते वृंदावन में जाकर पहुंचे, एक सुंदर जलाशय था उसके पास आए, और जितने छोटे छोटे गोप कुमार थे कृष्ण के प्रति इतने आसक्त थे कि हर कोई कृष्ण के साथ जाना चाहता था। जब कृष्ण चले जाते थे थोड़े आगे, सारे ग्वाल बाल बोलते थे आप हमसे कंपटीशन करते, कौन दौड़ करके आगे छुएगा, कौन उनको पहले फर्स्ट, कौन सेकंड, सब दौड़ करके जाते थे छूने के लिए। और जो पीछे हो जाता था वो रोता था, ऐसे जो सबसे पीछे आता था कृष्ण भगवान सबसे पहले जाकर के उनको गले मिलते थे, उनको प्रसन्न करते थे। इतने सौभाग्य इस लोग बालकों का, बछड़ों का, भगवान ने इतने प्रेम करते थे, इतने अपना मानते थे उनको, बड़े बड़े ऋषि मुनि सब सोच करके हैरान हो जाते थे, बोले इस गोप बालों का कितने अहोभाग्य है, कितने अहोभाग्य है कि इतने अपनापन उसके परम ब्रह्म के साथ है, भगवान परम पुरुष के साथ इतने परम अपनापन है उनका। इस प्रकार बछड़ा चराना बहाने में जब उन्हें घूमते फिरते हुए जलाशय के पास पहुंचे रामकृष्ण, तो बगुला आ करके उस पेड़ के झाड़ के पास चुपचाप बैठ गया, विशाल शरीर था। तो उन्होंने बछड़ा चराते चलाते उसको और गए, हटात सबके नजर पड़ गया, अरे ये पहाड़ है ना, और कोई नहीं, देखिए तो चिड़िया है, इतने विशाल ऊपर से नीचे, बच्चे देख कर ठिठक गए, स्तब्ध होकर देखते है, पहली बार हम देख रहे इतने बड़े चिड़िया, इतने बड़े पक्ष पहली बार देख रहे, देखते रह गए सब, डर के मारे देख देख कर थर थर कांप रहे थे। लेकिन रामकृष्ण, उनको तो डर था नहीं, उन्होंने दो चार कदम आगे बढ़ गए देखने के लिए कौन है, जैसे आगे बढ़ गए देखे कि विशाल बक है, उनको तो सर्वज्ञ है देख कर समझ लिए थे, लेकिन बक भी समझ लिया यही दोनों बालक खतरनाक है, और ये जो सांवला सा है यही दीदी को मारा था, हाँ वो बिल्कुल कंस ने उनको फोटोग्राफ दिया होगा, उनको आईडी प्रूफ दिया होगा, तो इसलिए बिल्कुल समझ लिया। वो थोड़े दूर में थे, अब सब देख रहे हैं देवता आदि, बक ने जैसे देखा कि बाकी सारे बछड़े और सब खड़े होकर स्तब्ध देख रहे हैं, तो चांस छुड़ाना नहीं, अपॉर्चुनिटी, दो डग में पहुंच गया उनके पास, वो तो दो पैर वाला होता, फटाफट विशाल था, दो स्टेप मारा बिल्कुल नजदीक पहुंच गया, पहुंच कर टप करके उनको चोंच में ले लिया, जैसे कोई बग बैठा था ना, बग देखते हैं जैसे मछली खाने के लिए बैठता है, बिल्कुल सफेद वर्ण का होता है, और नदी के किनारे जा करके बिल्कुल तपस्वियों की तरह बिल्कुल खड़ा रहता है, एक पैर में खड़ा रहता है, वान पर बिल्कुल महातपी तपस्वी करता है, ध्यान देता है, बिल्कुल ध्यानमग्न होकर देखता है, जैसे को देखता है बिल्कुल सफेद महा सतगुणी तपस्वी है, लेकिन जैसे मछली सामने आता है टप करके ले लेता है, उसको खा लेता है। इस प्रकार आपने चोंच विशाल था, और छोटे से कृष्ण को बिल्कुल आपने चोंचे से अंदर लेकर के सीधा अंदर ले लिया, कृष्ण को आपने मुंह में ले लिया, जैसे मछली को खाता है ऐसे कृष्ण को खा ही लिया। जितने सारे ग्वाले थे, जितने बछड़े थे, सब देखे कृष्ण बक में मुख में चला गया, तुरंत ही सब निस्पंद हो गए, निष्प्राण हो गए, सबके शरीर विवर्ण हो गया, मृतक प्राय हो गए सब, सब देख रहे हैं इसी अवस्था में, केवल संकर्षण थे, उनके मुंह बिल्कुल लाल पड़ गया, वो क्रोधित हो गए, वो कुछ एक्शन लेने वाले ही थे, लेकिन इतना टाइम लगा नहीं, वो अलग झमकते ही जितना समय लगता है उसके आधा क्षण में ही वो विषाण बत ने जो मुंह में ले लिया था कृष्ण को ओ ओ को का आवाज करके जल्दी से निकाल दिया, उगाल दिया उसको, उल्टी कर दिया। उनको लगा कि जलते हुए कोई तप्त अंगार मुंह में ले लिया क्या, ये तो देखने में तो काला था लेकिन इतने हीट कैसे आया, तो जल गया उनके गला फला सब, ओ ओ करके आवाज करके निकाल दिया उसको। निकाल करके दो चार बार चौंचू ठोका, ऐसे मुंह इधर उधर किया, घुमाया करता ना जैसे क्या गड़बड़ी कर दिया, अरे क्या है मैटर ले लिया मैंने। वो तो सोच रहा था लड़का है, मैं मछली खाकर प्रैक्टिस है, कितने जंतु खाया था लेकिन पता नहीं इतनी हीट था, 32,000 वोल्ट के करंट था उसके अंदर तो उसको तो बिल्कुल जंजाल गया था, अंदर छिला छला पड़ गया था। निकाल करके आंख लाल कर देख रहा हूँ, दो चार पर चोंच ठोका, ठोक ठाक करके थोड़ा सांस ले करके बोला ओह बच गया। और कृष्ण खड़े थे सामने में, देखा कि बोले खाया नहीं जा सकता, उसको चोंच मार कर मार दूंगा, छोटा सा बालक है। आगे बढ़ गया, बढ़ करके चोंच लेकर के कस करके चोंच मारना था, बिल्कुल ग्रीवा को मोड़ करके चोंच के प्रहार करना चाह रहा था। चोंच के प्रहार करेगा क्या, कृष्ण ने उसकी चोंच पकड़ ली। छोटी सी बालक थे, 2 साल के बालक, अपने छोटी छोटी हाथ में पकड़ ली उनके चोंच को, पकड़ करके दोनों हाथ पकड़ लिए, पकड़ करके उसको हिलाने लगे, खोलने लगे। सारे देवता ऋषि खड़े होकर देख रहे हैं बच्चा क्या कर रहा है। दोनों बगुला के उस पक्षी के चोंच को खोल करके आपने एक पैर उसका अंदर दबाया, नीचे से पैर जाकर दबाए और एक हाथ ऊपर किए। बगुला को लग रहा था ये उनका जितने हाइट जितने साइज का लड़का है वो तो मेरे एक साइड में इसकी तरह 10-5 ले जाऊं कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उनको पता नहीं था कि यही बालक था जब अली महाराज के यज्ञशाला में गया था, साइज वही 2.5 फीट का था। वही 2.5 फीट के साइज में पलक झपकते ही इसने विराट बन गया, ये ब्रह्मा जी के लोक तक से ऊपर चला गया। बामन से विराट क्षण भर में जो बन सकता है, और हाथ बढ़ाता है उनका हाथ कितने ऊपर उठते चला गया कोई सीमा ही नहीं। वही साइज तो उनका वही था छोटा सा बालक, लेकिन केवल दक्षिण हाथ ऊपर बढ़ता चला गया। चंचू को ऊपर उठाए, उठाते गए इतने ऊपर उठ गया हाथ कि बगुला देखते देखते बिल्कुल राइट 50-50 दो पार हो गया, दो पार करके दो साइड करके रख दिए, दो साइड करके रख दिए। रख करके जब मुंह मोड़ के देखे जितने सारे बालक और बछड़े सब निष्प्राण होकर पड़े थे, दृष्टि सब फूट गए, कूद करके दौड़ करके आए, आकर एक एक कर कृष्ण को अंक मार देने लगे, आलिंगन करने लगे और बछड़े आकर सूंघने लगे, सब देखने लगे। दो अर्जुन भद्र आकर के उनके हाथ उनके पैर देखने लगे। पटुकाशिक वक्त भी मर गया था, रक्त से वो लगा था भगवान के शरीर में, पोछ पाछ कर देख रहे कोई लगा कोई इंजुर्ड तो नहीं हुआ, वो सब चेक कर रहे थे तो पैर में इतना ब्लड लगा है, हाथ में भी लगा है, उनके मुंह के अंदर चला गया था, आपको कुछ हुआ था नहीं, सारे बड़ी चेकअप कर रहे थे कुछ गड़बड़ी नहीं हुआ। इतने में मधुमंगल आ गया, छी क्या कर रहा है, उचिष्ट मतलब झूठा, अरे चिड़िया के मुंह में चला गया था, चिड़िया का झूठा है, छू दिया उसको, अरे रे रे सब स्नान करो ब्राह्मण भोजन कराओ दक्षिणा दो तब काम बनेगा अब क्या झूठा छू लिया आप लोग ने। तो अब सचमुच उनका मुख में चले गए थे, उनका उचिष्ट हो गया, मुंह में जाकर उल्टी किया था, बोला एक मुंह में ले गया था पर उल्टी किया उसको, अब छू रहे सब कंटामिनेट हो गए, वो अकेले कंटामिनेट था, अब सब हो गए गड़बड़ी, जा सब कुछ स्नान करना पड़ेगा, स्नान करो ब्राह्मण भोजन करो, मैं स्वस्ति वासना करूंगा सब ठीक ठाक हो, चलो करो सब पटा। अब क्या ब्राह्मण भोजन कराएंगे, अब तो कृष्ण बोला ब्राह्मण देवता प्रणाम, अभी तो हमारे पास कुछ नहीं, कुछ लाए नहीं, लंच पैकेट लाए थे खा चुके, अभी बगुला पड़ा है वही हम देते हैं उसको भोजन करो अरे उसको कैसे भोजन करो, हम फूड रेगुलेटरी प्रिंसिपल पालन करने वाले हैं, हम थोड़ी खाते हैं बेचारा बकास उनको पता नहीं था, वो बेचारे बाल कृष्ण को मुंह में ले रहा था, वो सोचा था कि मैं मछली खा कर प्रैक्टिस हूँ, मछली भी बड़े बड़े मछली खाता हूँ, ये तो इस साइज के है, कौन सा बड़ी है, 2 साल का लड़का कोई बड़े मछली के तरह तो है ये, ऐसे समझा था। लेकिन वो बोलते हैं कि अरे हमारे सखा को मछली थोड़ी है, लेकिन उनको पता नहीं वो सखा भी उनके महामच्छ था। ऐसा मछली था कि प्रलय समय में सागर भी विक्षुब्ध हो गया था इस मछली को धारण करने में। इतने बड़े महामच्छ थे कि प्रलय समय में सत्यव्रत महामुनि को वही रक्षा किए थे, वो भी मच्छे है। तो वह उस मच्छे को खाना चाह रहा था, लेकिन ये मच्छे को ऑर्डिनरी मच्छे तो था नहीं, तो इसलिए बगला के दशा हुआ। तो इस प्रकार भगवान में अपने बाल स्वरूप में भी ऐसे ऐसे अद्भुत लीला करते थे कि देखने सुनने योग्य है। इस प्रकार असुरों को निधान भी करते थे, और असुर निधान करके जो क्रीड़ा करते थे उसी को ग्वाल बाल ने देखते थे, सुन करके आ करके ब्रज में उस कथा को कहते थे, ब्रजवासी प्रफुल्ल होते थे। उस कथा को व्यासदेव सुखदेव सुने और सुन करके लिपिबद्ध किए। आज हम उसको बोलते और सुनते बोल सुन करके हम जन्माष्टमी उत्सव भी मनाते हैं, तो हमारे तन मन चित्त पवित्र करते हैं। बोलो श्री बाल कृष्ण भगवान की, समवेत भक्त वृंद की, निताय गौर हरि प्रेमानंदे, हरे कृष्ण।
इस होलनेस भक्ति आश्रय अश्वर स्वामी महाराज की जय। तो देखा हमने महाराज ने इतने सुंदर तरीके से कथा सुनाई कि किस प्रकार से त्रिनावत का उद्धार किया भगवान ने, और बपासुर का भी उद्धार किया भगवान ने, और जैसे जैसे भगवान की लीलाएं सुनते हैं किस